जय राधा माधव जया कुंज विहारे। जय राधा माधव जया कुंज विहारे। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गौरनिताय जय गौरनिताय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि
चोदर शिष्य मदा भय चरणामिंद भक्ति विदान स्वामी शिला प्रभुपाद की इष्कन बीबी टी बी आई फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की नित्यला विष्णु जी विष्णु पाद परमच प्रवाज कोष्टोदर शिष्य मद भक्ति सिद्धांत सर जीरा शिला प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़ोस वृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य आनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोपवर्ण राधा कृष्ण संपन्न गिरिराज गोवर्धन की नदिया नवदीप धाम की मथुरा वृंदावन धाम की पुरी श्रीक्षेत्र धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की शील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्री श्री गौर निताय की जय कृष्ण बलराम की जय अधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय भक्त रक्षक सुदर्शन चक्र की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे
ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् मुदिरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी नमं ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 15 श्लोक नंबर 9 और 10। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। पहला श्लोक में तात्पर्य नहीं है, दूसरा श्लोक में तात्पर्य जो है उसको उच्चारण करेंगे। पहला श्लोक पढ़ लेता हूँ। 10 नंबर श्लोक इसमें है ना।
क्या हुआ? क्या टेक्नोलॉजी है।
गयम नृपाह का प्रतियाति कर्म भी जज्वाभिमानी बहुभिः धर्म गोप्ता समागत श्री सदाशस्पति सताम सत सेवक अन्य भगवत कलामृते।
महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे स्वजनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे श्री भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थ अंश कला थे। अतः महान अनुष्ठान यज्ञ को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। श्लोक नंबर 10। कुछ प्रॉब्लम आ गया तब मेरा 7 शब्दानुवाद आप पढ़िए। यमा जिसको अभ्यसिंचन अभिषेक करती थी, परया अत्यंत परम, मुदा संतोष से, सती ही अपने पतियों के प्रति भक्तिभाव रखने वाला तथा पतिव्रता स्त्रियां सत्य सचे आशीष आशीर्वाद दक्ष कन्या राजा दक्ष की पुत्रियां शरीद भी पवित्र जल के द्वारा जस्य जिसकी प्रजा नाम प्रजा की दुदुहे पूरा किया धरा पृथ्वी ने आशीष समस्त कामनाओं का निराशीष यद्यपि स्वयं कामना रहित तो होकर गुण वस्तुत उधा प्रजा पर राज्य करने वाले गय के गुणों को देखकर गोरूप पृथ्वी के थान से दूध की धारा निकल आई। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विधान स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की थोड़ा जोर से आवाज लगाना चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट तक जाना चाहिए पूरा आवाज जोर से। शिला प्रभुपाद की ये हुआ। हमें जय देने में बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए नवजोगिंद्र महाराज बोलते हैं थोड़ा उच्च स्वर में जय करोगे तो भगवान का चरण तक, मंदिर में बैठे जय भी नहीं बोलते। और श्रील प्रभुपाद हमारे के लिए कितने किए है, हमें उसके लिए प्रत्येक दिन 1000 बार जय ध्वनि देने से फिर कमी पड़ जाएगा, ये ध्यान देना चाहिए। महाराज दक्ष की श्रद्धा मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा एकनिष्ठ कन्याएं जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करते थे। असल में वे सभी महाराज गए से अत्यधिक संतुष्ट थे। पृथ्वी स्वयं गो रूप में प्रकट हुई और महाराज गय के उन्मत्त गुणों को देखकर दूध श्रवण करने लगी, मानो गय ने अपने बच्चों को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज गय पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रभ थे। तात्पर्य महाराज गय द्वारा शासित पृथ्वी की तुलना गाय से और जिन सदगुणों के कारण से कारण वे प्रजा पर शासन करते थे उनकी तुलना बछड़े से की गई है। बछड़े की उपस्थिति में गाय दूध देती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अर्थात गाय महाराज गय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली थी, क्योंकि वे अपनी प्रजा के लाभार्थ पृथ्वी के समस्त साधन का उपयोग करने में समर्थ थे। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि दक्ष की सचरित्र कन्याओं ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया था। जब तक कोई राजा या शासक उच्च अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता है, तब तक वह संतोषजनक रीति से प्रजा पर शासन नहीं कर सकता है। शासक के सद्गुणों से ही प्रजा प्रसन्न होती है और योग्य बनती है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सगणरघुनाथानि तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनसहगणा ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चनि गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रातः भागवत कक्ष में आप सभी को श्री श्री कृष्ण मौलाना का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो शीर्षक चल रहे हैं राजा प्रियव्रत के वंशजों का जस वर्णन, मैं ये श्लोक का ऊपर कभी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अचानक कल रात को लगभग 7:30 से 8 बजे का बीच में कॉल आया। प्रभु जी कल किसका क्लास था वो नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आप दे दीजिएगा। धर्मात्मा प्रभु ने फोन किया, लगभग नृसिंह आरती में गा रहा था, शाम को गा के उठा तो फोन बज रहा है, तो देखा धर्मात्मा प्रभु का। मेरा विचार में था, मैं कृष्ण के पास प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था सार्वम प्रभु का क्लास अभी चल रहा है उपदेशामृत, तब इसका बाद एक शीर्षक रखा था। पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, सभी लोग याद कर रहे हैं प्रभु जी कब आपका शाम का क्लास होगा, मृत्यु का बाद यात्रा ये टॉपिक है कब होगा, तब सारा पूछ रहे थे। मैं मन में सोच रहा था प्रभु जी का क्लास खत्म होने का बाद करूँगा, तब कल सोच रहा था नरसिंह आरती गा रहा था, सोचा धर्मात्मा प्रभु, क्योंकि सारा भक्त लोग कल शाम को पूछे प्रभु जी सार्वभौम प्रभु का क्लास कंप्लीट हो गया, प्रभु जी अभी कल जा रहा है और आप कल से चालू कर दीजिएगा, कल शाम को मेरा को बताया। मैं बोला ऐसा नहीं, 10 तारीख तक तो प्रभु जी का था, तब अचानक धर्मात्मा प्रभु का आया था कल, जब मैं सोचा प्रभु जी यही बात बताने के लिए आ गया होगा, लेकिन सुबह सुबह क्लास का ये आ गया। ये सब कुछ होता है जब आप इच्छा करते हैं कुछ प्रभु का भक्ति को आचरण करके शिक्षा देने के लिए, प्रभु ये इच्छा को पूर्ति करते हैं। तब मेरा ये जाजी का जो श्लोक का ऊपर चर्चा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो श्लोक है, जब तक आचरण नहीं करोगे तब तक ये आसन पर बैठ नहीं सकते हैं। इसी आसन को कहते हैं व्यास गदी, व्यासासन। जिसी आसन पे बैठना है मतलब ये व्यासदेव का आसन है, हम बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन इसी का ऊपर बैठने के लिए आचरण जब तक नहीं आएगा तब। इसलिए भगवद गीता में 3:21 में वर्णन आता है। ये श्लोक कितने भक्त लोग याद रखा है, 3:21 बस। भक्त लोग हमारा बहुत सारा कमजोर पड़ जाता है, गीता का श्लोक को याद नहीं करते हैं। गीता का श्लोक कम से कम भगवद गीता में 700 है। 700 से लगभग एक शून्य हटा के इतना श्लोक याद रखिए, कम से कम 700 से एक शून्य हटा दीजिए और कितना है, इतना श्लोक याद रखिए। प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को प्रभुपाद का लाइन में लगना है, प्रभुपाद के पास पहुंचना है। प्रभुपाद कृष्ण लोक में गोलोक वृंदावन में चौकीदार मतलब वहां पे गेट कीपर बने हैं, जो कि दरवाजा का चाबी काठी गोलोक वैकुंठ लोक का चाबी काठी लेकर बैठे हैं भक्त को स्वागत करने के लिए। और हमें भगवद गीता का मतलब श्लोक याद नहीं रखेंगे और प्रचार नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तब भगवद गीता का पहला 3:21 यही था, जज्जत आचार्य श्रेष्ठ से तत्त एवत रजना सजत प्रमाण कृते लोकस तदन वर्तते। आचरण होना चाहिए। और ये भी ये श्लोक इसका साथ कोटेशन होता है, आज का जो श्लोक है ये दोनों श्लोक में श्लोक का साथ ये कोटेशन होता है, इसलिए प्रभुपाद इसी श्लोक का ऊपर कोटेशन करते हैं। जज्जत आचार्य श्रेष्ठ से क्या है, क्योंकि जो महाराज गया था, गय का माता का नाम था द्युति और पिता का नाम था नक्त, ये दोनों भी धर्मशील थे। धर्मशील होने का नाता नाते गय भी धर्मशील बनकर आया और धर्म को आचरण किया। उनका राज्य में कोई भूखा भी नहीं था और राज्य शासन करने के लिए भार का अधिकार करने वाले राजा ऐसा होना चाहिए, आज का जैसा राजा ऐसा नहीं। प्रभुपाद अभी कहते थे ये श्लोक का ऊपर 3-3 श्लोक में प्रवचन दिए, एक बार न्यूयॉर्क में एक बार लॉस एंजलिस में, डेट में भी बताया 1966 में दिए हैं न्यूयॉर्क में और 30/12/68 में लॉस एंजलिस में। जज्जत आचार्य श्रेष्ठ से ये जो गीता का श्लोक है इसी श्लोक का ऊपर श्री प्रभुपाद ने 2 क्लास दिया 2 पे। फिर आचरण कहते थे, प्रभुपाद कहते थे ये जो अभी प्रजातंत्र शासन मतलब डेमोक्रेसी, असुर डिमो मतलब डिमन मतलब असुर, क्रेसी मतलब पागल, ये असुर सभ्यता है आज का टाइम पे। अभी पहले समय पे ब्राह्मण को चुना जाता था राजा बनाने के लिए और राजा का ऐसी आचरण था और राजा का आचरण देख के प्रजा लोग स्वतंत्र जीवन बिताते थे, आनंद खुशियां बनाते थे। जब तक राजा का आचरण नहीं तब प्रजा का ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और आज का टाइम पे भागवत के श्लोक के अनुसार कहते हैं कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है और शूद्र को आसन पर बैठा दें तब क्या करे कहेगा क्या करेगा। जिसी प्रकार एक चिंटी को ऊंचा स्थान मिल जाए चिंटी क्या सोचेगा, बहुत ऊंचा में आ गया। तो शूद्र अभी क्या कलयुग में सभी शूद्र है, कोई विचार नहीं। आज के आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सुने होंगे भारत में ज्यादा से ज्यादा हिंदू मंदिर को तोड़ा दिया जाता है, सुने तो होगा बहुत सारी जगह पे। 8 का पहले इतनी बड़ा हमांगा हो गया जो कि इस्कॉन भुवनेश्वर, क्या नेता है क्या राजा है, जो कि प्रभुपाद का कुटिया था भुवनेश्वर इस्कॉन मंदिर का सामने, प्रभुपाद 14 गए थे उनका भजन कुटिया, और उसका साथ साथ गौर गोविंद स्वामी महाराज का क्या था, समाधि, पुष्प समाधि नहीं, रियल समाधि। और इतने हरासमेंट कर दिया भक्त लोग को, क्या कहा जा सकता है आज का समय पे किस प्रकार राजा बनता है। कोई आचरण नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं। पहले समय पे जितने सब राजा बने सब ब्राह्मण परिवार के थे और ब्राह्मण आचरण करता था। एक एक नाम आप भागवत में सुने हैं, बहुत सारे भक्त का नाम आप सुने। देखिए भगवान स्वयं उनके लिए भी काम करते थे। एक देखिए परीक्षित महाराज, राज्य शासन करने का टाइम पे कोई कमी था और परीक्षित महाराज को स्वयं भगवान भी रक्षा किए और गर्भ के अंदर भगवान रक्षा किए। आप देखिए, मैं ये साइड में नहीं जा रहा हूं, आप थोड़ा से खाली ब्रीफ दे रहा हूं। परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा जिसको भगवान स्वयं रक्षा किए, क्योंकि अश्वत्थ माने अस्त्र पेशा, द्रोणाचार्य का पुत्र, अश्वत्थ माने अस्त्र पेशा। और परीक्षित को सुरक्षा कौन दिया? प्रभु ने। क्योंकि ये राजा बनेगा, राजा बन के आचरण करके सारा जगत को शिक्षा देगा, इसलिए प्रभु उसको सुरक्षा दे रहा है। बहुत सारा प्रमाण है। परीक्षित महाराज, इसका बाद है पृथ्वी जी, जो कि सत्यावेश अवतार माना जाता है। राजा पृथ्वी जब बने, खुद अपना जीवन में आचरण करे शिक्षा दिया। क्या आचरण किए देखिए, जब पृथ्वी महाराज का पास है, चार कुमार आए, चार कुमार आने का बाद पृथ्वी महाराज अपना सिंहासन से उतर के पहले चार कुमार का पद धोत किए। ये राजा है, ये चार कुमार आते हुए पहले राजा अपना सिंहासन से उतर के अपना जो सनंदन और सनत कुमार, चारों कुमार का पद धोत किए। पद धोत करके सिर में जल छिड़का लगाए। राजा होते हुए ये सभी के लिए शिक्षा है। राजा ऐसा होना चाहिए जो कि भागवत सुने, कि भागवत पढ़े। कब अभी जितने सब राजा बन रहे, कोई भागवत पढ़ रहा है ना, सुन रहा है? कोई भी नेता को देखिए, किसी भी नेता बनता है कोई भी भागवत नहीं सुनता है, भागवत भी पढ़ेगा नहीं। भागवत सिर्फ ये हमारे भक्त लोग के लिए ऐसा नहीं, ये शिक्षा है राजनीति सीखने के लिए। कैसा शिक्षा करना, भागवत ही शिक्षा देता है। इसलिए कहते हैं राजनीति। नीति मतलब क्या है? नीति का अर्थ क्या है? शिक्षा। और राजा शिक्षा देता था आचरण करके, इसको कहते राजनीति। अभी राजनीति नहीं, अभी प्रजानीति। प्रजा जो बोलेंगे वही होगा, इसलिए चोर चोर को ही वोट देता है, वो नहीं देखता है। तब यहां पे पृथ्वी महाराज आचरण करके शिक्षा दिया। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी, स्वयं भगवान होते हुए वो भी आचरण करके शिक्षा दिया। कहते आपने आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण होते हुए आचरण करके शिक्षा दिया। और भगवान राम भी, इसलिए कहते भगवान राम आदर्श गुरु है, आदर्श गृहस्थ है, आदर्श राजा है भगवान रामचंद्र। आदर्श को जीवन को किसी प्रकार शिक्षा देने के लिए अपना खुद को आचरण करके शिक्षा दिए। देखिए वहां पे जब दशरथ का पास है, कैकेयी ने जाके हाथ जोड़ के क्या बोला, भगवान राम को वनवास देने के लिए। भगवान राम को 14 वर्ष वनवास देने के लिए कैकेयी ने ये वर मांगा। दशरथ ने सिर में क्या आ गया, घबराहट आ गया। अब कैकेयी बोला भगवान राम को 14 वर्ष वनवास चला जाएंगे तो मेरा बेटा राजा बन जाएगा भरत। लेकिन जब भरत ये बात सुना, भाई मेरा वनवास जाएगा, तो भरत महाराज क्या हो रहे हैं, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के स्वयं अपना खुद मां को गाली देने लगे, खुद को मां को गाली देने लगे, मतलब मैं ऐसा गर्भ में क्यों आया, आप बांझ हो जाती थी तो बहुत अच्छा होता था, मेरा के लिए कल्याण होता था, आप ऐसा स्थिति में। भगवान राम को वनवास देने के लिए कहा, और जब भरत महाराज राज अभ्यसक होता है उसी टाइम पे क्या करते हैं, भगवान राम का चरण पादुका, चरण पादुका लेके शीर का ऊपर लेके जाते हैं और जहां पे रथ थे वहां पे रख के उसको पूजा करते हैं। बोले ये धरती का राजा मैं नहीं हूं, राजा कौन है, भगवान राम है, उनका चरण पादुका संभालते थे और हर दिन पूजा करते थे। और आज का समय पे कोई ऐसा किसी को भी बना दिया जाए, किसी को भी बना दिया जाए वो क्या बोलेगा, झगड़ा करना चालू कर देगा, बहुत अच्छा हुआ मेरा के लिए आसन बन गया। आज के टाइम में जैसा चलता है देश विदेश में हर जगह पे, तब जो राजा गए थे ब्रह्मा का पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद और प्रियव्रत, और ये जो उतानपाद का पुत्र थे ध्रुव और प्रियव्रत का पुत्र का जो वंश परंपरा, प्रियव्रत का जो वंश परंपरा उसी में आए गए राजा गए। जिसी प्रकार उतानपाद का ध्रुव महाराज का चरित्र में उसी प्रकार उसी में एक ही भक्त आता है, भक्त राजा भरत महाराज उनका चरित्र वर्णन आता है, उसी का प्रियव्रत वंश में आता है महाराज गए। लेकिन महाराज गए ही बहुत धर्मपरायण व्यक्ति थे, और दूसरा एक एक की चीज को हमें यहां पे प्रस्फुटित करेंगे क्या क्या है उनका अंदर क्या क्या गुण था, इसका अंदर इसलिए प्रभुपाद मेंशन करते हैं। राजा गए साक्षात भगवान की कला ही थे, उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञ का विधिवत अनुष्ठान करने वाला है, और उन्होंने अच्छा तरह से यज्ञ संपन्न करते थे, विधिपूर्वक यज्ञ करते थे, और यज्ञ में सभी को स्वागत करते थे और आहुतियां देते थे, और प्योर घी में और जो अनुष्ठान में आते थे उनको भोजन खिला के और दक्षिणा दे के उनको विदाई देते थे, और उनका अंदर मनुष्य उनका मन पूरा एकाग्रता था भगवान का भजन, और बहुज्ञ जो महाराज गए थे बहुज्ञ मतलब संपूर्ण शास्त्र को अध्ययन किए हैं, और अध्ययन करके मानसिक स्तर पर चिंतन करते थे, और प्रत्येक समय में धर्म की रक्षा करने वाला और धर्म को रक्षा करने के लिए, और लक्ष्मी का प्रिय पात्र साधु समाज का शिरोमणि थे, और सत पुरुष का सच्चा सेवक थे, और साधु संत लोग का सेवा भी करते थे, सत संकल्प लेते थे, कोई भी संकल्प लेते थे सत्य वचन करके, कभी भी झूठ जीवन में ना उच्चारण ना आचरण किया है। हम लोग घर से निकलते तो कितना 90% झूठ संकल्प लेते हैं और संकल्प को तोड़ते हैं। परम साधु श्रद्धा थे, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था, तथा उनका इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने जिस पर गाय बछड़े के स्नेह से पहनाकर दूध देती है उसी प्रकार गुण पर रीझ कर प्रजा के धन रत्नादि सभी अभिष्ट पदार्थ दिए थे। उनका जो श्रद्धा और भक्ति से इतने मग्न थे जो कि पृथ्वी ने गाय रूप धारण करता था, और प्रजा लोग ये पृथ्वी गाय रूप धारण किया प्रभुपाद ने मेंशन करते हैं, और प्रजा लोग बछड़े। और उनका मन में कोई भी कामना में नहीं थी, कोई कामना नहीं, तब भी वेदांत कर्म तक उनका सब प्रकार से भोग विलास देने का बाद भी उन्होंने निष्काम भक्ति किया। सारा कुछ संपत्ति उनका पास है, वैभव पूर्ण था, लेकिन कोई आसक्त नहीं थे। हमारा पास है सब कुछ आ जाए, हमें विरक्त हो सकते हैं? विरक्त हो सकते हैं? नहीं, कभी होना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अभी दो भक्त का बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दो भक्त जो कि जगन्नाथ का बहुत बड़ा प्रिय भक्त थे और धर्मनिष्ठ के साथ थे, और भगवान स्वयं उसका आचरण को देखते हुए भगवान स्वयं साक्षात सामने में प्रकट हुए। पहले मैंने जगन्नाथ भक्त चरित्र में पहले बोल चुका हूं, लेकिन जो नहीं सुने हैं फिर भी उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। जो भारत भूमि है, इतनी पवित्र भूमि, जिसी धरती में साधु संत लोग आते हैं, जिसी धरती में महापुरुष लोग आते हैं, जिसी धरती में भगवान स्वयं प्रकट लीला करते हैं, और भगवान का अवतार भी इसी धरती पे हुआ, जिसी धरती में गंगा बहती है, जिसी धरती में जमुना भी बहती है, और जिसी धरती में स्वयं तुलसी की प्रकट हुई, और जिसी धरती पे गीता भागवत प्रकट हुई, धरती कितना पवित्र है भारत भूमि। और पवित्र भूमि में रह के व्यक्ति को पवित्र कर्म करना चाहिए, और उसी प्रकार राजा होना चाहिए। और उसमें महाराज गए एक है, जो जगन्नाथ भक्त थे, दो भक्त, एक ही भक्त का नाम है कीर्तिचंद्र। नाम बहुत अच्छा है कीर्तिचंद्र, उसका मेंशन करेंगे। कीर्ति का अर्थ मतलब क्या है? जस, जिसका जस सारा विश्व में फैल चुका है। इतने महान थे, उन्होंने किया किए। कीर्तिचंद्र इतने धर्मपरायण थे, गांव पे सारा देश में डेंगुरा पीट के कह दिए, घर पे किसी का घर पे कोई भी देश से, किसी भी राज्य से कोई भी अतिथि आता है उसको सत्कार करना आप लोग का कर्तव्य है। ये धर्मनिष्ठ गृहस्थ व्यक्ति का धर्म निभाना है सभी का। किसी का पास है पैसा हो नहीं हो, धन रत्न हो नहीं हो, राजा ने सभी को ऐसा आदेश देकर रखा है, कोई भी किसी देश से आ जाए और बाई चांस आपका पास धन रत्न नहीं है तो मेरा से ले लेना। राजा ऐसा कहता था, मतलब मेरा से लेके अति सत्कार कर देने का, ऐसा धर्मपरायण व्यक्ति। सभी जगह पे डेंगुरा पेट के आवाज देकर कह दिया, और गांव पे, प्रत्येक गांव पे कुआं खुदाना, नलकूप बैठाना, और तुलसी, प्रत्येक व्यक्ति के घर का सामने तुलसी पौधा उगाना, सभी का घर का सामने तुलसी पौधा होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का हरि नाम जपना और शास्त्र पढ़ना, जो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा, ये भी बता दिया था। और सभी लोग को डर में मरे, अभी ऐसा हो जाए सारा भारत वर्ष में, भारत में कुणा कुणा में डेंगुरा पीट दिया जाए, जो व्यक्ति भगवद गीता नहीं पढ़ेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा, हरि नाम नहीं करेगा तो उसको देश से निकाल दिया जाएगा, क्या होगा? सभी लोग प्रभुपाद का शरण में आ जाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो वही चाहते थे, मैं से प्रभुपाद एक ही बार ये देश का राजा बन जाते थे तो देश के लिए क्या हो जाता था, सभी जगह में हरि नाम, सही शील प्रभुपाद की। तो कीर्तिचंद्र ने अपना कीर्ति को फैलाने लगा। जब फैलाया, एक बार क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ को मालूम पड़ गया, तो भगवान सोचने लगे, बोले बहुत अच्छा, दान पुण्य करने वाले राजा है, तो मैं एक बार जाता हूं थोड़ा दक्षिणा के लिए। तो भगवान छोटे ब्राह्मण बनकर आए, सन्यासी ब्राह्मण बन के आए, कृति चंद्र का घर का सामने आ गए, पहुंच गए। हाँ, और कृति चंद्र और पत्नी था, हाँ प्रियवती पत्नी का नाम, तब दोनों को दोनों घर का सामने सन्यास ब्राह्मण को देख के दंडवत प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम करने के बाद कृतिचंद्र कहने लगे, क्या आदेश, हम क्या सेवा कर सकते हैं राजा, ऐसा होना चाहिए, क्या सेवा कर सकते हैं। तब सन्यास ब्राह्मण कहने लगे, कहे मैं बहुत जंगल में रह के बहुत तपस्या करता था, बहुत तपस्या करते करते मेरा अंदर में थोड़ा ये जंगल से बाहर आने का बाद तेरा मेरे अंदर में थोड़ा काम शक्ति जागृत हो चुका है। कृतिचंद्र कहने लगे, तब फिर इसके लिए क्या करना है। मतलब मैं जानता हूं आपका जो जसो सारा विश्व में फैल चुका है और आप ही कर सकते हैं, आप संकल्प लीजिए, देने के लिए तैयार होना चाहिए। तब कृतिचंद्र का हाथ में जल देते हैं, संकल्प दिलाते हैं। क्या संकल्प, कहते मेरा अंदर में जो काम शक्ति बढ़ चुका है, कृपा करके एक रात के लिए आपका धर्मपत्नी मेरा साथ रहे। तब कृतिचंद्र कहने लगा, मैं सोच रहा था मेरा प्राण चला जाएगा, मैं सोच रहा था मेरा प्राण ले लेंगे, ऐसा कुछ संकल्प मैं सोच रहा था। आप सिर्फ मेरा पत्नी धर्मपत्नी की एक रात साथ में रहने के लिए, ठीक है। तब कृतिचंद्र जाके अपना धर्मपत्नी को कहने लगे, बोले जो सन्यासी आए आपका साथ एक रात बिताना चाहते हैं। तब धर्मपत्नी कहने लगे, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं पिता माता का अंडर में थी, अभी आपका हाथ, अभी शादी होने का बाद आपका अंडर में आ चुका हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, तथास्तु। पत्नी भी तैयार हो गए। तब कृतिचंद्र जाके भगवान को, भगवान ब्राह्मण रूपी सन्यासी को कहने लगे, बोले ठीक है। फिर पत्नी को, कृतिचंद्र अपना पत्नी को कहते हैं, मेरा जैसा आप सेवा करते थे इसे ही सेवा करने का। जब भगवान लेटे है तब प्रियवती जाके पहला प्रणाम करता है, भगवान का नजर पहले पड़ता है। हाँ, प्रियवती जाके प्रणाम करता है, प्रणाम करने का बात है पद संभाषण, पहले क्या करता है, पदों को, पैर को मसाज मसाज करते हैं। करने का बाद है भगवान समझ जाते हैं, देखिए कितने निष्ठापूर्वक ये सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर इसका बाद क्या करते हैं, बोलते ये तो ऐसा हो गया, भगवान सोचने लगे, फिर कहते हैं इसी प्रिय वती को मैं मार देता हूं, देखते हैं उसका कितने धैर्य है, कितने धर्मपरायण व्यक्ति है। तब उसका श्वास को ले लेते हैं, प्रियवती को मृत्यु मतलब देहांत कर देते हैं। देहांत करने का बाद है और उसका शरीर में जितने अलंकार है, रानी का शरीर में जितने अलंकार है सारा भगवान लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब सुबह होता है, सारा दास दासियां आते हैं घर सफाई करने के लिए, देखते थे घर पे डेड बॉडी पड़ा है, प्रियवती मृत शरीर पड़ा है, देखते हुए सब चिल्ला चिल्ला के रो रो के जाके राजा को कहने लगे, बोले आपका धर्म पत्नी मर चुकी है। तब राजा आश्चर्य होता है, बोला कौन मार कर गया। तब आज के देख के घर का दरवाजा खोलता है, रानी मरा पड़ा है। देखते हुए फिर कहते वो सन्यासी ब्राह्मण कहाँ गए, ढूंढो थोड़ा सन्यासी ब्राह्मण को। तब सभी लोग चार तरफ ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते सन्यासी ब्राह्मण एक ही पेड़ का नीचे बैठे है, भगवान वहां पे बैठे है। और वो राजा को आदेश देते हुए, राजा को बताते हुए, राजा को लेकर वहां तक जब पहुंचे, तब सन्यासी को, सन्यासी ब्राह्मण जो भगवान सन्यासी ब्राह्मण बनकर आए थे, तब राजा वहां पे जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, बोले आप कम से कम तो थोड़ा बताकर आना चाहिए, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, ऐसा क्या हो गया था। तो भगवान वहां पे साक्षात दर्शन देते हुए दे के कहने लगे, मैं आपका आपका जो धैर्य वो देखना चाहता था, आपका जो आचरण उसको देखना चाहता था। और भगवान फिर आते हैं घर पे, तब राजा ने फिर पदधोत करता है, पदधोत करके और भगवान स्वयं वो जल को छिटका लगाते हैं, किसका ऊपर, प्रियव्रती का ऊपर छिटका लगाते हैं, इमीडिएटली प्रियव्रती जाग जाता है। तब वो दोनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप कौन हो, अभी तक हमको पता नहीं है। तो भगवान इमीडिएटली क्या करते हैं, भगवान इमीडिएटली चतुर्भुज नारायण होके दर्शन देते हैं दोनों को दोनों, कहते हैं भक्त भावे हा कुजे करंती दर्शन, कोटि कोटि जन्म पाप हुआई बहन। भक्ति भाव से जो इसको दर्शन करते हैं, कोटि कोटि जन्म पाप हुई बहन, करोड़ करोड़ जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। जे चतुर्धा मूर्ति को जेहू देखो नाही, सत पुण्य कले सेहु मुक्ति न मिलाई। चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन, चतुर्धा मूर्ति को जो दर्शन नहीं किया है, सत पुण्य कले सेहु मुक्ति न मिलाई। हजार हजार पुण्य कर्म किया है, जब तक जगन्नाथ को जगन्नाथ मंदिर पर रत्न सिंहासन पर दर्शन नहीं किया तब तक उसका मुक्ति ना मिलता है। इसलिए यहां पे भगवान स्वयं चतुर्भुज का रूप में दर्शन दिया है राजा कीर्तिचंद्र और प्रियव्रती को। राजा का धैर्य देखिए, आचरण देखिए, ये की राजा दूसरा और ये की राजा है। ये राजा के बारे में सुनोगे तो आपको रोना आ जाएगा, ये राजा किस प्रकार धर्मपरायण थे। राजा ये जो आप गय का बारे में आप सुन रहे, पांच श्लोक सिर्फ ही राजा गय का गुणानुवाद ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। ये पांच श्लोक में आप 13 श्लोक तक उनका ग्लोरिफिकेशन सुनते रहोगे, राजा का बचपन से लेकर कैसा धर्मपरायण था, क्या किया है, ये ग्लोरिफिकेशन आपको बता रहा है। ये उनका ग्लोरिफिकेशन है, गुणानुवाद, उनका संपूर्ण जीवन में क्या किए हैं, कैसा आचरण किया है। यहां पे और कहते हैं एक ही राजा था, राजा कुलशेखर, जो मुकुंद माला शस्त्र वो लिखा वो नहीं, आप ध्यान रखिए, ये राजा कुलशेखर नहीं, ये जगन्नाथ का प्रिय भक्त था राजा कुलशेखर, बहुत धर्मपरायण भक्त जगन्नाथ का पूरा प्रिय भक्त है। तब कुलशेखर ने इतने आचरण किया है जीवन में भक्ति भावना को, सारा जगत में उनका नाम फैल गया, सारा जगत में नाम फैल गया। और उन्होंने क्या करते थे, सारा देश वैश्यों को लेके भागवत कक्षे करते थे, जैसा हमारा सुबह होता था होता है, तब वो राजा कुलशेखर का समय पे वो शाम को होता था, प्रत्येक दिन भागवत कक्षा होता था और सभी लोग उसमें, राजा सिर्फ नहीं इसमें प्रजा भी आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, कोई भी, और चार वर्णों चार आश्रम सब करने वाले सब सुनने का आएंगे, सभी लोग को सुन रहे हैं भागवत। तब राजा बैठे, राजा बैठ के पढ़ रहा है और सभी लोग को सुन रहा है। तब एक दिन क्या हुआ, राजा का गुरु आ गए, राजा का गुरु आ गए, राजा इमीडिएटली अपना सिंहासन से उतर के क्या किए, गुरु को क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मिरर दिखाना होता है, क्या करना पड़ता है, दंडवत करना होता है, साष्टांग प्रणाम करना होता है, गुरु को देखते हुए प्रणाम किया। राजा कुलशेखर ने प्रणाम किया, प्रणाम करने का बाद तब राजा को आसन दे, राजा अपना आसन पे बैठा और गुरु को भी आसन दे दिए, गुरु भी वहां पे बैठे और फिर भी वही कथा चलते रहा। कथा सुनते रहे, सुनते सुनते तब फिर एक ही मक्खी राजा का मुख का ऊपर उड़ते रहा, उड़ते उड़ते उनका सिर का ऊपर बैठता था और बैठ के खून चूसने लगा। राजा तो मग्न है भागवत पढ़ने में और सभी को सुनाने में, और वो जो मक्खी खून चूस रहा है उनको पता नहीं चला। और जब थोड़ा महसूस हुआ तब क्या किए राजा ने, उड़ा दिए, मतलब वो मक्खी को उड़ा दिए। उड़ाने का टाइम पे तब राजा का सिर पे जो राजा ने गुरु को प्रणाम करने का टाइम पे जो धूल लगा हुआ था वो धूल निकल गया, और जो धूल निकल गया तब गुरु राजा को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए मौन हो गए और मुख को नीचे करके बैठ गए। तब राजा देखा गुरु का क्या हुआ, गुरु क्यों मौन बैठ गए, कुछ नहीं बोल रहा है। तब राजा हाथ जोड़ के गुरु को पूछा, आचरण देखिए। गुरु ने बताया, गुरु क्या बताया, बताया जब गुरु को प्रणाम किया जाता है, गुरु का जो पद रज सिर में लगने मात्र से करोड़ों जन्म का पाप नष्ट हो जाते तत्क्षणात, और आप सिर में वो धूल को हटाने मात्र से करोड़ जन्म का पाप फिर चढ़ जाता है, इसलिए इसी धूल को हटाना नहीं चाहिए था। इसलिए कहते हैं ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त का चरण ये भजन अनुकूल है। और दूसरा अर्थ में चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्त पद रज आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महावल, तीन महावल है भक्त पद रज, पद रज मतलब धूल, भक्त पद जल पद धोत शुद्ध भक्त का, और भक्त भुक्त अवशेष और उनका भोजन महाप्रसाद। भक्त भुक्त भगवान का पास भोग लगने के बाद प्रसाद कहते हैं, भक्त का पास भोग वही प्रसाद, भक्त का पास लगने के बाद उसका नाम होता है महाप्रसाद। चलिए भक्त भुक्त अवशेष तीनों महाबल। तब ये भक्त रज था, भक्त पद रज आप शीर्ष हटाया, तब राजा परेशानी हो जाता है, क्या करूं, हाथ जोड़ के। तब वहां पे गुरु इतने कह के अंतर्ध्यान हो चुके हैं, राजा मन में विचार करता है क्या करूं, कैसा मेरा उद्धार होगा, प्रायश्चित करने लगा। और प्रत्येक जीवात्मा को, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में प्रायश्चित करना ही करना है, और ये प्रायश्चित उन्होंने क्या किया, प्रायश्चित करने के लिए सारा ब्राह्मण जितने पंडित थे उसी देश में सभी को कहने लगे, आप लोग को शास्त्र बता, शास्त्र में क्या लिखा है, इसके लिए प्रायश्चित क्या है, देखिए मेरे को बताइए, सभी लोग को बताने लगे, कोई किसी प्रकार अलग अलग चीज बताने लगे। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहने लगे, चले ये करोगे थे आपके लिए प्रायश्चित है, क्या करना है, करना है 6 फुट एक तंबा प्लेट लीजिए, 6 फुट तंबा प्लेट है, और प्लेट नीचे नहीं लगना चाहिए, जमीन में नहीं लगना चाहिए, कम से कम नीचे 1 फुट 4 पिलर बनाना है, उसका ऊपर प्लेट रखना है, और प्लेट का नीचे कोक मतलब ईंधन होना चाहिए, क्या लकड़ी जलाना चाहिए, लकड़ी हो गैस हो जो भी है इधर, और लकड़ी जलाना चाहिए और ये प्लेट फुल गर्म होना चाहिए, पूरा गर्म होना चाहिए। गर्म होके क्या करना है, इसका ऊपर 108 बार प्रणाम करना है, तब जाके आपके लिए प्रायश्चित है। राजा इसमें सहमत हो गया, करने के लिए तैयार हो गया, सारा कुछ तैयार हो गया और पूरा गर्म प्लेट, पूरा गर्म लाल लाल प्लेट फुल गर्म। आप बताइए तंबा प्लेट कितने गर्म होने से कितने समय तक यो हीट रहता है प्लेट का ऊपर। तो राजा के ये प्रायश्चित को प्रजा लोग को सुनते हुए सभी रोने लगे, बोले मत कीजिएगा मत कीजिएगा, ऐसा मत करो, सब रोने लगे। तब राजा भगवान को भक्ति में रहते हुए प्रार्थना करने लगे जगन्नाथ को, और नया वस्त्र पहना, संपूर्ण सारा तीर्थ में जल ला के स्नान किए। स्नान करने का बाद प्लेट का ऊपर प्लेट को प्रणाम करते हुए जगन्नाथ को प्रार्थना करते हुए इसका ऊपर चढ़े। जब इसका ऊपर चढ़े एक बार प्रणाम करने मात्र से संपूर्ण शरीर जलकर भस्मीभूत हो गया, जैसा सभी प्रजा लोग को दिखाई दिया, जैसा शरीर संपूर्ण जल के भस्मीभूत हो गया और मांस जल के गिरने लगा। ऐसा करते करते प्रजा लोग सभी रोने लगे, प्रजा लोग बारम्बार बोल रहे मत कीजिएगा मत कीजिएगा, लेकिन राजा नहीं, मेरा प्रायश्चित, मैंने कितना बड़ा गलती किया है। तब जब 36 बार प्रणाम किया, जब 36 बार प्रणाम किया, तब भगवान स्वयं और धैर्य नहीं, मतलब भगवान का रत्न सिंहासन हिलने लगा, ऐसा रत्न सिंहासन हिलते हिलते भगवान स्वयं भागने लगे। भगवान आते हुए तब राजा कुलशेखर का सामने पहुंचे नहीं, जब हिलते रहा तो भगवान वहीं से हाथ को, जगन्नाथ का हाथ ऐसा है ना, कैसा है जगन्नाथ का हाथ, भक्त को गले मिलने के लिए हाथ को फैलाया, हाथ को फैलाते हुए फिर उसको खींच लिए। भगवान स्वयं जगन्नाथ क्या किए, कुलशेखर को खींच लिया और तंबा प्लेट को ठंडा बना दिया, शीतल मतलब पूरा बर्फ जैसा आइस बना दिया। तो आइस बनाने का बाद फिर और गले मिले, मिलने का बाद फिर राजा कुलशेखर 108 बार बताया ना, 108 बार फिर प्रणाम करते रहा, प्रणाम करने का 108 बार जब पूरा हो गया तब फिर जगन्नाथ तो स्वयं प्रकट हुए। प्रकट हो गए तब कुलशेखर राजा जाके प्रार्थना करता है, प्रभु आप ही सुरक्षा दिया और ये मेरा प्रायश्चित था। तब भगवान कहते हैं, तब उनको साथ में लेकर जाते हैं जगन्नाथपुरी में। तब जगन्नाथपुरी में वो भजन और भक्ति करते करते उनका प्राण को त्याग भी देते हैं राजा कुलशेखर। इसे शिक्षा मिलता है राजा कैसा आचरण करके सारा जगत को शिक्षा देता है। देखिए गलती क्या था, देखा जाए गलती क्या था, एक धूल को हटाने मात्र से इतने बड़ा प्रायश्चित, ये प्रजा को शिक्षा देना चाहता था राजा ने, प्रजा को शिक्षा देना चाहता था इस प्रकार शिक्षा। और ये जो गय है उसी प्रकार शिक्षा हमको मिलता है जो कि राजा स्वयं आचरण करके शिक्षा दे। नहीं तो प्रभुपाद कहते थे भगवद गीता में, प्रभुपाद कहते थे आज का दुनिया में क्या होता है, जो जज्जत आचार्य श्रेष्ठ है इसका भावार्थ में इसलिए प्रभुपाद कहते थे ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो शिक्षक खुद आचरण करके शिक्षा दे। ऐसा नहीं कि एक शिक्षक धूम्रपान करे और बच्चे लोग को बोले धूम्रपान मत करो, क्योंकि सिगरेट का पीछे लिखा हुआ ना इंजूरियस हेल्थ, लेकिन खुद ही सिगरेट पीता है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, आचरण करके शिक्षा दो। और सजत प्रमाण कुरुते लोग तदनुवर्तते, इसको प्रमाण क्या है, लोग मानेंगे ये अच्छा व्यक्ति है, कैसा मानेंगे, सिला प्रभुपाद अपना किताब का अनुसार कोटेशन करते हैं, प्रभुपाद का कितने वैल्यूबल किताब है इसको देने के लिए। प्रभुपाद पहला जो हमारा प्रधानमंत्री 1964 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिला है, अपना किताब का ऊपर लाल बहादुर शास्त्री क्या लिखा आप देखिए, भगवद गीता का पीछे लाल बहादुर शास्त्री ने दो लाइन लिखा हुआ, पढ़े कि नहीं पढ़े, अभी तक नहीं पढ़े भगवद्गीता भी, तब ये पढ़े नहीं तो भगवद्गीता क्या पढ़ा पता भी नहीं है। लेकिन पीछे देखिए लाल बहादुर शास्त्री क्या लिखा है, सारा विश्व को कृष्ण भावना भावित करने के लिए ये यही जो किताब है ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसको सारा जगत में प्रचार प्रसार होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ शील प्रभुपाद की।